ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा ने ये सुंदर मौका आप सभी भाई बहनों को दिया है भट्टी करने का, तपस्या करने का। बहुत बड़ा लक्ष्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है कि हमें संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, घर जाना है, देवता बनना है। बहुत कुछ लक्ष्य दिए बाबा ने। ब्राह्मण जीवन के ये सारे लक्ष्य हैं, लेकिन इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करने होते हैं, जिसके लिए बाबा ने हमें कितना ज्ञान दिया है, योग सिखाया है, धारणाएं बताई है, सेवा करने की युक्तियां बताई है, और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है कि बच्चे तुम्हें इस कलयुगी दुनिया को बदल सत्युग बनाना है, इस नरक को बदल स्वर्ग बनाना है। पर इस विश्व के परिवर्तन से पहले स्व को बदलना है। इसलिए हमारा नारा बड़ा प्रसिद्ध है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। एक एक बूंद से सागर बनता है। जब हरेक ये लक्ष्य रखता है कि मुझे बदलना है, तो मेरे परिवार में उसका प्रभाव पड़ेगा, परिवार से मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले से समाज में पड़ेगा, समाज से देश में पड़ेगा, देश से फिर विश्व में पड़ेगा। तो खुद को हम कैसे बदलें, उसकी युक्तियां हमको बाबा की मुरलियों से मिलती रहती है, जिसके लिए बाबा ने हमें आत्मा का कितना गहरा ज्ञान दिया है, अपने साथ योग लगाने की विधि बताई है, एक एक गुण कैसे धारण करें हम उसकी गहराई बताई है, और किस प्रकार विश्व सेवा हम करें उसकी ऊंचाई बताई है, जिससे हम सहज ही ये जन्म तो अपना सफल कर ही लेते हैं, लेकिन 21 जन्म तक हमारा जीवन इतना सफल हो जाता है क्योंकि भगवान से सर्व प्राप्तियां करते हैं। और इस जन्म में बाबा कहते तुम मेहनत करो तो फिर तो प्राप्ति प्राप्ति है। जैसे पढ़ाई के समय अगर बच्चा अच्छी तरह पढ़ाई करता है और फिर उस पढ़ाई से जो उसको रिजल्ट मिलती है, अच्छी रिजल्ट हुई, तो फिर तो कमाई ही कमाई है, फिर तो प्राप्ति ही प्राप्ति है, बस थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो संगम पर बाबा हमें क्या मेहनत देते हैं, पहले तो हर मुरली में बाबा यही कहते हैं, बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा समझो, दे अभिमान को त्यागो, ये देह अभिमान ही सभी दुखों की जड़ है। इसीलिए आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, हर मुरली में बाबा कहते हैं। और जब तक हम देही अभिमानी नहीं बने हैं तब तक बाबा हमको कहते रहेंगे, जैसे बच्चे को माँ बार बार समझाती है, और जब तक वो नहीं कर लेता है तब तक समझाती रहती है। तो बाबा भी हमको समझाते रहते और बाबा कहते अंत तक समझाऊंगा, क्योंकि ये आत्म अभिमानी का पाठ आदि का भी है तो अंत का भी है। अंत का पाठ किस रूप में होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप के रूप में। उस समय कोई देह और देह के संबंधों की याद नहीं आए अंत में, बस मैं और मेरा बाबा। तो वो भी तब होगा जब आत्माभिमानी स्थिति होगी। इसीलिए बहुत काल का अभ्यास बाबा हमको कराते हैं। जब बहुत काल का अभ्यास होगा तभी हम अंत के समय एवर रेडी रहेंगे, क्योंकि कभी भी बुलावा आ जाए, अचानक होगा। तो इसीलिए बाबा हमको कहते तीन शब्द सदा याद रखो, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल का अभ्यास। लेकिन ये सब करने लिए बाबा कहते हैं तुमको कोई टेंशन में नहीं आना है। कई बार हमको लगता है बाबा ये भी करो, बाबा कहते हैं। तो बाबा तो आपको बहुत काम दे चुके हैं, बहुत काम दे रहे हैं ना। जैसे किसी को बहुत काम दो तो वो टेंशन में आ जाता है, इतना काम यही सोचता रहेगा, और वो काम का की सोच ही उसको टेंशन में ला देती है। लेकिन बाबा हमको इतनी सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कर्म योगी भी बनो तो मेरी याद में हर कर्म करो, जो बोझ है वो मुझे दे दो। धारणा करनी है तो बाबा कहते बस अपने अनादि आदि स्वरूप को याद करो, तुम तो वही थे, कोई नई बात थोड़ी कर रहे हो। तो हर बात बाबा हमको सहज करके देते हैं। सेवा भी कैसे करो, बाबा कहते खेल है, डांस करना, गीत गाना, खेल है ना। तो ये चारों सब्जेक्ट्स वास्तव में कोई टेंशन नहीं लाते हैं, पर हाँ बाबा कहते अटेंशन जरूर हो, पूरी एकाग्रता से करो। और अगर उस एकाग्रता से करेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, इतना खुशनुमा हो जाएगा। और जब खुशनुमा जीवन हो जाएगा तो फिर बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे। बाबा को पता है कि हमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत कष्ट उठाए हैं, अभी बाबा वो मेहनत नहीं देते हैं। तो सर्वप्रथम आत्मा का ज्ञान देकर बाबा ने कैसे बेफिक्र बना दिया। दुनिया में मृत्यु का कितना डर है मनुष्यों को। कई लोग तो कदम कदम पर यही मुख से शब्द कहते, हाय मर जाऊंगा, हाय मर जाऊंगी, हाय मर न जाऊं, हाय 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 करते रहते हैं, मुख से मृत्यु का डर दिखाते हैं। क्योंकि जितने भी प्रकार के डर हैं दुनिया में, कई बातों में डर लगता है, लेकिन सर्वोपरि जो डर है वो है मृत्यु का डर। और बाबा ने हम बच्चों का ये डर सबसे पहले निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? बच्चे तुम तो कभी मरते ही नहीं हो, तुम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। भले दुनिया में ये कहते हैं लोग, हम आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, मैं आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीता में आता है दूसरे अध्याय में, लेकिन मैं वो सचमुच आत्मा हूं ये निश्चय नहीं है, इसलिए अनुभव भी नहीं है। और यहां बाबा हमको देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाओ माना देह से देह के सब संबंधों को भूलो। आज बाबा ने कहा बेगर बन जाओ। बेगर का मतलब भिखारी नहीं, बेगर माना सब बातों को बुद्धि से किनारा, बेफिक्र बादशाह। तो इसीलिए आत्मा के ज्ञान से हम मृत्यु के डर से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि मैं आत्मा तो कभी मरती नहीं हूं। तो चोला बदल रही हूं, सत्युग में ये बहुत सहज होगा, मां आत्मा का ज्ञान होगा, खास करके देह त्यागने के समय स्वइच्छा से आत्मा देह त्याग करेगी और नया चोला बच्चे का जो मिलना है वो भी साक्षात्कार होगा। इसलिए मृत्यु का तो डर की तो बात ही नहीं है। और स्वइच्छा से, क्योंकि शरीर पुराना हो गया, जिसके लिए बाबा सांप का मिसाल देते हैं, कैसे सांप अपनी चमड़ी खुद उतारता है और अंदर से उसको नई चमड़ी मिल जाती है। इसलिए आत्मा के ज्ञान से हम इतने बेफिक्र हो जाते हैं कि मृत्यु का डर तो खत्म ही हो जाता है। अभी मुख से कभी निकलता है किसी के, हाय मर जाऊंगी, हाय मर जाऊंगा, हाँ निकलता है, निकलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो मरते ही नहीं है, हाँ मरते हैं क्या। तो अगर किसी के मुख से कभी ये निकल गया, निकल जाता है, हाय मर गई, हाय मर गई, हाँ न जाने कैसे कैसे ये शब्द बोलते हैं, हाँ तुम क्या मुझे मारने आए हो, कई बार गुस्सा में गुस्से में आके ऐसे भी शब्द निकालते हैं। तो कोई किसी को मार नहीं सकता है, चलो शरीर भी छूट जाए, बाबा कहते खुशी न जाए, ये किस आधार पर होगी? शरीर छूट जाए पर खुशी न जाए, ये किस आधार पर होगी? जब अंदर में ये पक्का निश्चय, मैं तो कभी मरता ही नहीं हूं, तो मैं वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, देह से न्यारी हूं, ये सतत हमारा अभ्यास अगर चलता रहा तो हम बेफिक्र बादशाह हो सकते हैं। और कभी मुख से ये शब्द नहीं निकालेंगे, हाय मैं मर गई, हाय मर न जाऊं, हाय ये हाय हाय नहीं निकलेगा। मरना शब्द तो निकलेगा ही नहीं। कोई अगर मरता भी है तो हम लोग कभी नहीं कहते मर गया, ये द्वापर कलयुग की भाषा है मर गया। लेकिन हम संगम की भाषा क्या है, जो सत्युग त्रेता में भी चलती है, देह त्याग किया, आत्मा ने देह त्याग किया। ये देह त्याग ये एक बहुत ऊंची भाषा है। इसलिए देह त्याग तो ऐसे हुआ जैसे वस्त्र बदल रहे हैं, तो क्या हुआ? तो इसीलिए मृत्यु शब्द जो डराता है वो हम बच्चों को नहीं डराएगा। इसीलिए इसमें तो बेफिक्र बादशाह बनी जाओ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ते पर खड़े हो जाओ, ट्रेन के पटरियों पर खड़े हो जाओ और कहो मैं तो कभी मरता नहीं हूं। हाँ, लोग कहेंगे पागल हो गया है। क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं कि ये संगम युगी जीवन अमूल्य है, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए इसे तो मर जाऊं अच्छा है, कभी नहीं सोचना चाहिए। यहां तक कि बाबा कहते कितने भी बीमार हो, शरीर पुराना है लेकिन चतिया लगा के भी जिंदा रहना है, क्योंकि ये संगम युगी जीवन बहुत अमूल्य है। कुछ दवा कुछ दुआ से इस शरीर को चलाना है। हाँ, जब हिसाब किताब पूरा होगा तो कोई किसी का नहीं, आत्मा भी शरीर को नहीं पूछेगी कि मैं जाऊं, आत्मा पूछेगी क्या शरीर से मैं जाऊं? अगर पूछेगी तो शरीर जाने देगा? इसलिए ना वो पूछती है ना शरीर कोई जाने की देने की बात ही है। एक सेकंड में हिसाब किताब पूरा हुआ, आत्मा पंछी उड़ा। इसीलिए आत्मा के ज्ञान ने तो हमें बहुत बेफिक्र बना दिया है। फिर परमात्मा के ज्ञान ने तो और भी बेफिक्र बना दिया है। कैसे? बाबा हर वक्त कहते हैं बच्चे तुम कभी भी अपने को अकेला नहीं समझो, अकेला समझेंगे तो डर लगेगा, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। तो बाबा मेरे साथ है और हजारों भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है तो फिर दुख की क्या बात है? कई बार हमको इस बात का भी दुख होता है, माया मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं, मैं इतना काम कैसे करूंगा, कैसे होगा, मैं तो अकेला हूं। लेकिन हम भूल जाते हैं हम अकेले नहीं हैं, बाबा मेरे साथ है। तो बाबा मेरे साथ है, हजार भुजाओं वाला मेरे साथ है, तो किस बात का फिक्र? कुछ भी अगर बोझ है बाबा को दे दो, देखो बाबा कैसे कराता है, देखिए तो देखो बोझ बाबा को। जैसे हम बहुत हमारे पास सामान होता है, मान लो अब ट्रेन से नीचे उतरना है तो सामान तो बहुत है, अब कोई कहेगा कैसे उतारूं, इतना सामान। तो कोई कहता है चिंता क्यों करते हो, कूली को बुलाओ ना, कूली बहुत है, वो तो फटाफट आपके पास आ जाएंगे। तो कूली को बुलाया और कूली ने कहा लाओ सामान, फिर एक यहां से पेटी लेगा, इधर अटैची लेगा, कुछ सिर में रखेगा, कुछ कंधे पर रखेगा, फिर कहेगा और लाओ। आप कहेंगे इतना कैसे उठा ही सकेगा, इतना बोझ कैसे उठाएगा, कहता लाओ, क्योंकि उसके लिए बोझ क्या है, ये तो उसका रोज का धंधा है, हमारे लिए बोझ लगेगा। और ही मांगेगा, लो और कुछ चाहिए, और कुछ देना है क्या, दो। और हम समझ नहीं, थोड़ा तो मैं उठाऊ ना, इतना कैसे उठाएगा। तो हम तो एक थैला उठाते हैं, हाय बोझ लगता है, वो कहता है माता जी हमको दो ना, मैं उठाता हूं, आप क्यों उठा रहे हो, सब दो। तो बाबा क्या कहते हैं, ये बोझ मुझे दे दो। हम सोचते अरे भगवान के पास तो दुनिया के लोगों का बोझ है, मेरा क्यों, मेरा भी मैं बोझ दो, मैं तो खुद उठा सकती हूं, अरे क्यों उठाते हो? और आपका एक हाथ दो हाथ नहीं, हजार भुजाओं वाला आपका साथी है, इसीलिए डर तो खत्म ही हो जाता है। और वो कैसे भी करके आपका कार्य कर देगा, बाबा को साथ रखा तो, बाबा की याद में किया तो जरूर आता है ना। महाभारत में दिखाते हैं कि जब उससे पूछा गया कि अर्जुन ये सब पांडवों के साथी थे, साथी था श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण ने मदद क्यों नहीं की पांडवों को, क्यों नहीं रोका? कई बातों में जुआ खेलने के लिए रोका क्यों नहीं, ये सब क्यों नहीं किया? लेकिन क्या बताया श्री कृष्ण ने, मुझे याद कहाँ किया, मुझे याद ही नहीं किया, अगर याद करते होते तो मैं मदद करता, लेकिन याद ही नहीं किया। अगर याद किया तो किसने किया? द्रौपदी ने किया। वो भी इतना कुछ सहन करने के बाद उसने याद किया, और जब याद किया तो भगवान की मदद मिली। अब ये एक उदाहरण है हम बच्चों के लिए कि आप बाबा को याद करो, बाबा अवश्य आपको मदद करेगा, हो ही नहीं सकता कि मदद ना करे, पर याद तो करो। इसीलिए बाबा कहते अगर मेरे साथ हो, बाबा साथ में है, तो फिर कोई डर की बात ही नहीं है। कई ऐसे भाई बहनों के उदाहरण आते हैं कि हम अकेले जा रहे थे, बाबा को कहा बाबा आपको मेरा साथ चलना है, हाँ बाबा आप ही हो, और सचमुच बाबा की याद में हम जाते हैं, और कोई समझो आता भी है और ऐसे कोई गलत काम करने भी जा रहा है, लेकिन अचानक उसको लगता है कि कोई साथ में है इनके, जबकि कोई है नहीं, लेकिन लगता है कि कोई साथ में है, और वो हिम्मत ही नहीं करते हैं आगे आने की, क्योंकि हम उस समय बाबा की याद में हैं और उसको अनुभव होता है कि कोई साथ में है, पर हम अब डरते रहते हैं, हाय मैं अकेली हूं, हाय मैं अकेली हूं, तो वो तो वार करेगा। अगर तो इसीलिए बाबा को कभी भूलना नहीं है, कभी छोड़ना नहीं है। ये जब हमारी लगन इतनी पक्की होगी तो हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं ड्रामा का ज्ञान, आज तो बाबा ने सारी मुरली इसी पर ही चलाई, ड्रामा का ज्ञान, इतना श्रेष्ठ ज्ञान बाबा ने हमें ड्रामा का दिया है, ये ड्रामा कितना सुंदर है, कितना श्रेष्ठ है, इनसे ऊंची कोई कहानी हो ही नहीं सकती है। कई कहते हैं ना बाबा ये थोड़ा हमारा पार्ट बदल जाए, थोड़ा ड्रामा बदल जाए, थोड़ा ये दृश्य बदल जाए, ये बदल जाए, बाबा अगले कल्प में ये नहीं देना, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, इन जैसा ड्रामा और कोई हो ही नहीं सकता है, नंबर वन ड्रामा है, इसी को ही सारे कॉपी करते हैं, जो नाटक बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं बेहद के ड्रामा को देख के, तो इसीलिए इनसे और अच्छा हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज बाबा ने कहा कि वो जो क्रिएटर है उसको पसंद है, तो हम तो पाठधारी है, तो हम कहेंगे क्या कि हमको ड्रामा पसंद नहीं है, ऐसे कहेंगे? हमें तो और भी ज्यादा पसंद होना चाहिए, क्योंकि हम तो उसमें एक्टर हैं, क्योंकि जो मालिक है उसको पसंद है, तो हमको क्यों नहीं पसंद होगा, जरूर होना चाहिए। अगर नहीं पसंद इसका मतलब उस मालिक से इतना प्यार नहीं है, उस दाता से इतना प्यार नहीं है, उस रचयिता से इतना प्यार नहीं है, क्योंकि जो रचयिता को भाता है वो मुझे भी भाता है, तो बाबा को ये ड्रामा तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ड्रामा की हर सीन प्यारी है, अगर ये हम सोचेंगे तो हम किसी भी बात में डरेंगे नहीं। ड्रामा का हर दृश्य सही है, सही है, गलत नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए था, ड्रामा का हर एक्ट जो भी चलता है वो कुछ भी नया नहीं है। और जो भी कदम चलता है ड्रामा के अंदर ये सब कल्याणकारी है। तो जितना ही नया नहीं है उतना ही कल्याणकारी है, उतना ही सही है। इनसे कुछ अलग अगर होगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए जब बाबा की ये बात हम सुनते हैं तो हमारे अंदर से भय खत्म हो जाता है। कुछ नया होना ही नहीं है तो प्रश्न भी नहीं उठते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, सब सही है, सब सही है। तो न प्रश्न उत्पन्न होते हैं और न उस दृश्य को देख करके आश्चर्य होता है, क्योंकि पता है कि ये सब पूर्व निश्चित है, सब पूर्व निश्चित है। इसीलिए आश्चर्य की क्या बात है, कोई नई बात नहीं है। और फिर जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कल्याण है, ये और भी ऊंची बात है। जो कल्याण हमें उस समय दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखाई देता है, हम उसमें अकल्याण समझते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि सीमित है और उस सीमित बुद्धि होने के कारण हम उसमें अकल्याण समझते हैं, लेकिन उसमें कल्याण समाया हुआ है। समझो कोई गाली दे रहा है, आप कहेंगे उसमें कल्याण क्या समाया हुआ है, गाली दे रहा है, देखो इतना अपमान कर रहा है। लेकिन वो हमारी सहन शक्ति की परीक्षा है, ये मेरी सहन शक्ति की परीक्षा है तो कल्याण है ना मेरे लिए। कितनी सहन शक्ति मेरे अंदर है वो कैसे पता चले, अगर कोई सामने अपमान करने वाला न हो तो। परंतु वही समय है हमको अपना स्वमान याद करने का, तो हम स्वमान को कब याद करेंगे, नहीं तो स्वमान तो भूल ही जाता है। बाबा मुझे किस नजर से देखते हैं वो स्वमान भूल जाता है, तभी अपमान लगता है। तो स्वमान अगर याद है सदा, बाबा के जो टाइटल्स बच्चों को दिए हैं, हमें दिए हैं बाबा ने, तो अपमान लगेगा नहीं। अभिमान है तो अपमान लगता है, और अगर आत्मा का स्वमान है तो लगता है कि मैं तो सहनशील आत्मा हूं, तो महसूस होती है अपनी शक्तियां। ये तो और ही अच्छा हुआ, मेरा अनुभव बढ़ा। कोई अगर फेलियर हुआ, कुछ नुकसान हुआ, तो नुकसान को भी नुकसान नहीं समझेंगे, नुकसान तो हुआ लेकिन हम उसको नुकसान नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव बढ़ा, नहीं तो अनुभव कैसे होता मुझे, अगर ये नुकसान नहीं होता तो मुझे अनुभव कैसे होता। तो इसीलिए जो भी कुछ होता है ड्रामा के अंदर वो सब कल्याणकारी है, और जैसे हम ये सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मन शांत हो जाता है और अंदर में हम बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं। बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दे दिया है। एक बार बाबा ने किसी से पूछा, क्लास में पूछा, कि जो अपने आप को त्रिकालदर्शी समझते हैं वो हाथ उठाओ। तो सबने हाथ उठाया, बाबा ने तो अपने त्रिकालदर्शी बनाया है। तो बाबा ने परीक्षा ली, एक बच्चे से पूछा, अच्छा तुम अपने को त्रिकालदर्शी समझते हो? उसने कहा हाँ बाबा मैं बिल्कुल हूं। तो बाबा ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कल क्या होगा, कल क्या होगा बताओ। आप त्रिकालदर्शी हो ना, आपको पता है ना कल क्या होने वाला है। तो कहा बाबा पता नहीं है कल क्या होने वाला है, पता नहीं। तो कहा फिर त्रिकालदर्शी कैसे हो आप? तो कहते हो मैं त्रिकालदर्शी हूं, माना जो कल हुआ, जो आज हो रहा है, जो कल होगा, वो तीनों काल आप जानते हो, तो कल क्या होगा वो बताओ। तो बेचारा मूंझ गया। फिर दूसरे से पूछा तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बाबा उसने कहा बाबा जो भी होगा ना कल्याणकारी होगा, कल्याणकारी। बाबा ने कहा ये राइट, त्रिकालदर्शी किस आधार पर है, किस आधार पर त्रिकालदर्शी है कि जो भी होगा उसमें जो भी सब कुछ जो भी वो कल्याणकारी होगा। अब त्रिकालदर्शी भी हो गए और निश्चिंत भी हो गए, क्योंकि कुछ भी नया भी नहीं है, इसीलिए न प्रश्न उत्पन्न होता है, न आश्चर्य होता है, न कोई दुख होता है, दुख भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं, बाबा यहां तक कहते दुख के आंसू तो कभी आने ही नहीं चाहिए। अगर दुख के आंसू आए इसका मतलब, हाँ बाबा कई बार कहते हैं, जैसे वो पतियों का पति चला गया आपका, कौन रोते हैं जो विधवा है, अब पतियों का पति हमें मिला और हम रो रहे हैं। तो कई कहते हैं बहन जी खुशी के आंसू है, प्रेम के आंसू है। वास्तव में मैं जहां समझती हूं, जहां तक ये प्रेम के आंसू या चलो खुशी के आंसू, इसमें भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं ना अंदर, तब आते हैं। अगर हम अंदर से मजबूत हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, कठोर नहीं है परंतु बहुत मजबूत हैं, तो ये दूसरे प्रकार के आंसू भी नहीं आएंगे, क्योंकि साक्षी दृष्टा हो जाएंगे, हर बात में साक्षी दृष्टा। इमोशनल हो जाते कई छोटी छोटी बात में, जैसे भावनात्मक हो जाते हैं, वो स्थिति भी आत्मा की कमजोरी है। हाँ बाबा के प्यार में चलो हम इतना खो जाते वो अलग बात है, कभी कभी प्रेम के आंसू आते वो कुछ और बात है, लेकिन जो अंदर में इमोशनल इतने भावनात्मक हो जाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं, फिर उस प्रकार से जो उस समय आंसू आते हैं वो ज्ञानी तो आत्मा के नहीं हो सकते, वो भक्तों के बहुत होते हैं। तो इसीलिए ड्रामा का जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है उसे हम साक्षी दृष्टा भी हो जाते हैं और बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं। भगवान ने हमें बादशाह बनाया है, संगम युग का भी बादशाह है, भगवान के दिल तख्त पर बैठे हैं। ये दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है जो बादशाह होगा? अगर फिक्रों की टोकरी उठा के चल रहे हैं तो बादशाह थोड़ी कहलाएंगे, बादशाह थोड़ी कोई टोकरा उठाता है, वो तो बहुत हल्का घूमता है। इसीलिए मैं बेफिक्र बादशाह हूं, बाबा मेरा साथी है, ड्रामा मुझे साक्षी स्थिति का अनुभव करा रहा है, सब कल्याणकारी है, सब श्रेष्ठ है, भगवान को ये ड्रामा पसंद है तो मुझे भी पसंद है, इसीलिए कोई प्रश्न मन में आते ही नहीं है, सदा ही मैं खुश रहता हूं, तो समझो मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूं। और बाबा तो कहते पद्मा पदम भाग्यशाली, लेकिन कौन बन सकता है पद्मा पदम भाग्यशाली? जो ड्रामा पर अडिग हो, इतना निश्चय बुद्धि हो कि ड्रामा है ही कल्याणकारी, कुछ भी नया नहीं है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताती हूं, हाँ? कैसे डर खत्म होता है। एक छोटा सा उदाहरण है, अमेरिका हम गए थे तो अमेरिका में वहाँ हॉलीवुड है जहाँ एक्टर्स, जहाँ पर फिल्मिंग होती है, फिल्म की शूटिंग होती है, फिल्में बनती है हॉलीवुड में, तो हम वहाँ गए थे, वो दिखाते हैं टूरिस्ट को दिखाते हैं, और एक विशेष स्टूडियो में ले गए, वो सबको दिखाते हैं। अब वो इतना बड़ा स्टूडियो था जो बात मत पूछो, ये हॉल का 4 गुना होगा, 4 गुना इस हॉल का। वहां पर कैमरास लगे हुए थे, पता नहीं क्या 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 बहुत कुछ था, सीढ़ियां थी, ये आवाज आपस में बातें कर रहे थे, बहुत कुछ था। तो हमको एक प्लेटफॉर्म पर ले गए, प्लेटफॉर्म पर, और हमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म को पकड़ो, उसकी जो रेलिंग है उसको पकड़ना, और डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, बार बार वो गाइड यही कहे डरना नहीं। हमने कहा भाई क्या होगा पता ही नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, पहले से ही बोल रहा है पर होना क्या है वो पता ही नहीं। तो बार बार कहे देखो डरना नहीं, डरना नहीं, तो हम अलर्ट हो गए। तो फिर क्या हुआ, एकदम जोर से झटका आया, वो जो प्लेटफॉर्म था वो हिला, इतना जोर से हिला, सब डर गए सब डर गए क्योंकि वो प्लेटफॉर्म हिला है, नहीं तो पता थोड़ी था, ये तो अचानक हुआ, पहले थोड़ी बताया था कि प्लेटफॉर्म हिलेगा, ये कुछ नहीं कहा, बस डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। हम कहते ये बार बार क्यों बोल रहा है डरना नहीं, नहीं डरेंगे क्या होगा, पर तो ये अचानक हो गया ना, तो सब डर गए। तो कहा देखो आप लोग डर गए, अच्छा अभी आगे से डरना नहीं। फिर उनका ठीक है अभी नहीं डरेंगे, अभी क्या होगा आगे। तो अचानक एक आवाज हुई, जोर से आवाज, और एक वहां पर ब्रिज बनी हुई थी, वो ब्रिज टूट गई, उनका ब्रिज टूट गई। फिर दूसरी जगह आवाज हुआ, और एक आदमी था जो सीढ़ी पर खड़ा था, अचानक उसको आग लग गई और वो गिर गया। अब फिर तीसरी और कुछ हुआ, चौथी और कुछ हुआ, अब तो देखते रह गए और डरते रह गए, पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कहीं यहां तक ना आ जाए। हाँ डरते रहे, डरते रहे, और बार बार कहते डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो करीब 10 मिनट तक चला, और का जोर से पकड़ के रखना बस, वो भी हिलता रहे, हमारा प्लेटफॉर्म भी हिलता रहा, पर डरना नहीं, डरना नहीं, बस इतना ही कहता रहा। आखिर क्या हुआ, वो सब जैसे पूरा हो गया तो बिल्कुल जैसे सब, जैसे नहीं सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया जो कुछ भी था। फिर हमको कहा कि अच्छा अभी डरना नहीं, डर डर की तो थक गए थे अभी डरना नहीं, अभी देखो चमत्कार। तो फिर प्लेटफॉर्म हिला, और जैसे प्लेटफॉर्म हिला ना, तो वो जो ब्रिज टूट गई थी वापस आ गई, फिर वो जो व्यक्ति जला हुआ नीचे गिरा वापस आ गया, फिर ये सब वापस आ गया, एक 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 करके सब वापस आ गया। हम तो आश्चर्य खाने लगे पहले तो डरते रहे, फिर आश्चर्य खाते रहे, अच्छा ये वापस आ गया, ये वापस आ गया, ये वापस आ गया, कैसे आ गया वापस, अभी तो बिल्कुल रियल था जो वो टूटा फूटा, आग लगी, ये सब मर गया, ये क्या नहीं देखा, ये सब वापस आ गया। तो लास्ट में उस गाइड ने हम लोगों को कहा, तो देखो जब हम लोगों की फिल्में बनती है ना, ऐसे थोड़े ये सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि फिल्मों में तो बहुत कुछ दिखाते हैं, ये टूटा वो टूटा, बिल्डिंग गिरी, वो गिरा वो गिरा, लेकिन कुछ भी होता नहीं है, कुछ भी होता नहीं है। तो अब ये प्रश्न था, पहेली थी, तो ये जो रियल में हमने देखा वो क्या वो सब गलत था, सब झूठ था। तो कहा बस यही यही विज्ञान है, कुछ भी नहीं हुआ खत्म, नहीं तो बार बार कौन बैठ करके फिर से रिपेयर करेगा, फिर से ये ठीक करेगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो देखो हमने इसको किससे कंपेयर किया, इस बेहद के ड्रामा से। कल्प पहले जैसे आपका शरीर था, जिन कणों से बना था, इस कल्प में आपको वही शरीर मिला है, वही कण वापस आए। अभी आप सोचो, वही सोचो आप, کیسے سب واپس آئے. تو ہسٹری بھی ریپیٹ ہوتی ہے, جغرافی بھی ریپیٹ ہوتی ہے, بھوگول, اتہاس, سب کچھ ریپیٹ ہوتا ہے, ہر درشیہ ریپیٹ ہوتا ہے. ایک فلم ہے بس, وہ فلم کی ریل چلتی ہے, لیکن وہ لائیو ہے, دکھائی دیتا ہے, اور وہ تو کیول ایک پردے پر ہوتا ہے. پردے پر کیا نہیں درشیہ ہوتے ہیں. تو ہم ڈرتے ہیں کیا, ڈرتے ہیں کیا؟ آج کل تو یہ پینارومک وہ ہے نا, ایسے وہ شیر آتا ہے, چیتا آتا ہے, اتنا نزدیک آ جاتا ہے آپ کے اوپر گرے گا. آج کل یہ بہت کچھ ہے, اتنا وہ درشیہ کیسے ہوتے, ایک دم چھوٹے سے اتنا بڑا ہو جائے گا ایک دم سے, اور ایک دم آپ کے اوپر جیسے آپ کے اوپر چھلانگ مار رہا ہے, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. پر ڈر جاتے ہیں لوگ, بہت ڈر جاتے ہیں. تو ہم بھی جیون میں اتنی سب باتیں آتی, ہم ڈر جاتے ہیں, چنتا کرتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں, اشانت ہوتے ہیں, نہ جانے کیا کیا سوچتے ہی رہتے ہیں, سوچتے ہی رہتے ہیں. بابا کئی بار کہتے ہیں, دادی گلزار کا یہ فیوریٹ پوائنٹ تھا, وہ بات واپس نہیں آتی ہے, لیکن ہم اس بات کا سوچتے 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 اتنا سمے سواس سنکلپ شکتی ویرت گوا دیتے ہیں. تو دیکھو, اسی لیے بابا نے ہمیں ڈراما کا اتنا سندر راز بتا دیا ہے, جس سے ہم بہت سہج بے فکر بادشاہ بن جاتے. لیکن ہر وقت وہ ڈراما یاد رہے, ہر وقت ڈراما یاد رہے. ڈراما کو الٹا نہیں لینا ہے. جیسے چاقو کو اٹھاتے ہیں, چاقو سے کوئی چیز کاٹنی ہے, پرنتو کس کو چاقو پکڑنا نہیں آیا تو کیا کرے گا, وہ الٹا پکڑے گا, اور وہ چیز توڑنے کی بجائے آپ کی انگلی ٹوٹ جائے گی, تو انگلی کو لگے گا, جبکہ وہ چیز کو لگنا چاہیے. تو الٹا پکڑنے سے نقصان ہم کو ہی ہوگا. طریقہ آنا چاہیے کیسے چاقو کو پکڑنا ہے, کیونکہ دھار ایک ہی طرف ہوتی ہے. اسی لیے بابا کہتے ہیں یہ ڈراما کا گیان اتنا شریشت ہے, پر یہ آپ کا ایمرجنسی گیٹ ہے, ایمرجنسی گیٹ ہے. جب کوئی بات آپ کو ایسی ہو جائے جو بہت کنفیوژن کرے, کیا ہوا کیسے, پرشن اٹھنے کی بجائے ایک سیکنڈ میں فل سٹاپ ڈراما. یہ ایمرجنسی گیٹ ہے, ہر ٹرین میں, ہر بس میں, ہر جگہ ایمرجنسی گیٹس ہوتے ہیں, ہوائی جہاز میں, ودیشوں کے اندر تو فائر ایگزٹس ہوتے ہیں, فائر ایگزٹس, کہیں آگ لگے تو وہ دروازہ جو ہے وہ تبھی کھلتا ہے جب کہیں آگ لگے. فائر اسٹیئرکیس ہوتی ہے, فائر لفٹ ہوتی ہے, وہ اگر کہیں آگ لگی تو یہ ایک لفٹ ہے, اس کو بار بار یوز نہیں کرنا ہے, کیول آگ کے سمے یا کوئی درگھٹنا کے سمے یوز کرنا ہے. تو ڈراما کو کب یوز کرنا, ایمرجنسی میں, جب اور کوئی راستہ نہیں ہے, باقی پرشارتھ کرو. اس لیے کئی پرشن کرتے پرشارتھ کیوں کرے, سب ڈراما میں نشچت ہے تو. لیکن پرشارتھ بھی نشچت ہے, اس لیے پرشارتھ سے گھبراؤ مت. اسی لیے کا کرمنے وادی کا رستے ماں پلیشو کداچن, کرم پر پورن ادھیکار رکھو, بابا کی یاد میں نشچت نشچنت ہو کر کے کرم کرو, بابا ساتھی ہے, سب ہوگا, اچھا ہی ہوگا. اب جو کچھ بھی اگر ہو بھی گیا, ڈراما کہہ کے فل سٹاپ بندو لگا دو, تو کبھی بھی آپ کی خوشی جائے گی نہیں, کبھی کوئی دکھ ہوگا نہیں, کبھی بھی کوئی چنتا نہیں ہوگی, کبھی بھی ڈریں گے نہیں, کبھی بھی مرجھائیں گے نہیں, کیونکہ ہر آتما اپنا اپنا پارٹ بجا رہی ہے. تو بن جائیں گے نا بیگم پور کے بادشاہ, بے فکر بادشاہ, یہاں پٹھی سے سب بے فکر بادشاہ ہو کر کے جانا ضرور. اور جو بھی کچھ بات ہو نا, واہ بابا واہ, واہ ڈراما واہ, واہ میں واہ, بولو ہاں, واہ بابا واہ, واہ ڈراما واہ, واہ میں واہ. تو بس نہ بابا بھولے, نہ اپنا سوامان بھولے, نہ اپنا ڈراما بھولے, ہاں, ये सब याद रहे तो देखो वाह वाह ही हर वक्त होगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। वैसे तो दीदी ने हमें भरपूर किया है और सभी प्रश्नों से परे हम सभी को प्रसन्न चित्त बनाया है, परंतु फिर भी ज्ञान की चर्चा होती है तो सुनते सुनते भी मन में कई प्रश्न और भी उत्पन्न होते हैं। तो दीदी से हम एक बात पूछना चाहेंगे कि दीदी, जो भी हम, एक भाई ने भी पूछा है अभी कि सभी क्लासेस सुनते हैं तो सभी में समाधान यही होता है कि योग करना है, बाबा को याद करना है, लेकिन जब कोई फिकर होती है ना तो उस वक्त बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो बाबा को भी जैसे शिकायत तो करते हैं लेकिन योग नहीं लगता है, तो उस वक्त योग कैसे लगे जब कोई समस्या हमारे सामने होती है। तो आपने वैसे तो ड्रामा की बात बहुत अच्छी बताई, लेकिन उस वक्त योग का अभ्यास क्या करें जो उस वक्त भी हमारी स्थिति योग में पावरफुल बने।
इसका मतलब ये हुआ कि बाबा को बोझ देना नाता नहीं, जो अगर बहुत मन चलता रहता है योग लगता नहीं, इसका मतलब वो बोझ जो दिमाग में है ना, मन में है, वो बाबा को देना आता नहीं है, इसीलिए बोझ महसूस होता है। तो क्या हम बाबा को शिकायत करने की बजाय बाबा को बोझ दे क्यों नहीं देते हैं? बाबा अभी आप संभालो, मैं तो आपका हूं, छोटा बच्चा बन जाओ। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, कोई बात, बच्चे को कोई चीज दे दो, मम्मी आप उठाओ, फट से अपने मम्मी को दे देगा, बच्चा कैसे उठाएगा। तो बाबा को बोझ दे दो ना, यही बताए ना। ये क्यों योग नहीं लगता, क्योंकि वो बोझ सिर पर रख करके बैठे हो तो हल्के कैसे होंगे। हल्का माना ये सब जो किचरा है ना वो निकल जाए, और वो कैसे निकलेगा, दबाने से नहीं निकलेगा, बाबा को दे दो। क्या दिल अंदर से निकलता है बाबा, अभी आप जानो, जिनका सचमुच हर वक्त ये निकलता है, हाथ उठाओ, देखो थोड़े ही निकल, थोड़े हाथ उठा रहे। अच्छा, जिनका नहीं निकलता इसका मतलब बोझ खुद पकड़ के रखा है ना। कौन कहता है पकड़ो आप बोझ, कई बार है ना भट्ठी में आते हैं यहाँ भट्ठी करने के लिए, और पर घर की चिंता होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक बार एक बहन थी, दादी जानकी के पास आई, तो जैसे चेहरा उदास, बड़ा मायूस, जैसे चिंतित। तो दादी ने उनसे पूछा, ये आप इतनी उदास क्यों हो, मधुबन में तुम आई हो, यहाँ तो तुमको भरपूर होके जाना है, भर के जाना है। तो कहती है, दादी यहाँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर जाऊंगी फिर ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, 10 बातें बताई। तो दादी ने कहा, वो घर की बातें यहाँ क्यों याद कर रही हो, इसका मतलब आप यहाँ वो बातें याद कर रही हो तो यहाँ का कब भरोगी आप। जो अंदर में बाबा हमें दे रहे हैं वो तो भरने के लिए जगह ही नहीं है, आपने तो वो पुरानी बातें, वो जो बेकार बातें, वही भर के रखी अपने अंदर, उसे खाली हो जाओ, बाबा को दे दो। बाबा अब आपको संभालना है, मैं तो आपके पास आ गई हूँ, अब आपको संभालना है, बाबा आपसे ज्यादा अच्छा संभालेगा, ये समझ लो। लेकिन बोझ देने आना चाहिए, थोड़ा अपना मोह है, हाय क्या होगा, थोड़ा अपना लोभ है, कुछ लालच है, कुछ तो कारण होगा ना, इसीलिए बोझ नहीं देते बाबा को। इसीलिए बाबा ने यही बताया, पहले बाबा को बच्चा बना दो, फिर बाबा बंधा हुआ है आपको 21 जन्मों की प्राप्ति कराने लिए, पर बाबा को बोझ दो तब तो। इसीलिए योग नहीं लगता, योग नहीं लगता माना एक तो बाबा को बोझ दिया नहीं, और दूसरा होगा कोई न कोई आज्ञा का उल्लंघन किया है, आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए भारी हो गए हैं, इसलिए योग नहीं लगता है। इसलिए बाबा कहते कोई भी कुछ भी करो, पहले ये अंदर में सोचो, ये श्रीमत के अनुसार है। श्रीमत क्या कहती है, श्रीमत क्या कहती है, बाबा अगर इस समय यहाँ होते ब्रह्मा बाबा तो वो क्या करते, वो क्या सोचते, वो क्या बोलते। तो बाबा की याद हर वक्त रहेगी और उसी समय वो अटेंशन रहेगा और वो गलत काम से बच जाएंगे। इसीलिए बाबा ने उस दिन भी वरदान में कहा, वो अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है, अटेंशन का टेंशन मत रखो। अटेंशन माने अटेंशन, अलर्ट एक्टिव वो तो रहना ही है, पर टेंशन किस बात का, बाबा बैठा है, वो मालिक बैठा है, हमें काहे की चिंता, हमें बस अपना कार्य सही रूप से करना है, फिर बाकी बोझ बाबा को। पर अंदर में दिल साफ चाहिए, ये बहुत जरूरी है, दिल साफ मुराद हासिल। बड़ा दिल रखो तो देखो आपकी हर मुराद बाबा पूरी करेगा। तो दिल बड़ा भी रखो और साफ भी रखो तो इतने हल्के रहेंगे जो हर वक्त लगेगा मैं तो उड़ रहा हूं, मैं तो उड़ रही हूं, यही अनुभव करेंगे। ठीक है
हा? तो सभी ने सुना ही है कि जितना हम बाबा के पास से कुछ मदद लेना चाहते हैं, तो दीदी का कहना है कि हम भी बाबा की हर बात को इतना ही प्यार से स्वीकार करें, हर श्रीमत पर चले, हम भी बाबा की सेवा के लिए, दिनचर्या की फॉलो करने के लिए, पवित्र बनने के लिए इतना ही तत्परता दिखाएं, तो सामने बाबा भी उतना ही अधिकार से हमें मदद भी करेंगे। तो कभी कभी दीदी इसीलिए डर लगता है क्योंकि हम बाबा का इतना नहीं मानते,
बिल्कुल,
इसलिए फिर लगता है कि बाबा मेरा सुनेगा कि नहीं। बाबा को बोल तो देते हैं लेकिन फिर भी डर लगता है क्योंकि मैं बाबा का नहीं सुनती हूँ, तो मुझे लगता है बाबा भी शायद मेरा सुनेंगे कि नहीं।
बाबा को कार्य दे दो बस, बाबा अब यही आपको करना है, और सचमुच देखो कैसा आपका हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा।
और दीदी उसके साथ वायदा भी तो करे ना कुछ,
बिल्कुल,
बाबा मैं भी आपके कहे अनुसार ये सब कुछ छोड़ूंगा, करूंगा, ये भी जरूरी है।
इसलिए बाबा कहते पहले आज्ञाकारी तो बनो। अब माँ बाप भी बच्चे को तब देंगे, मदद करेंगे, जब पहले बच्चे आज्ञाकारी तो बने। आज्ञाकारी है नहीं तो ऐसे ही मदद करेंगे क्या, ये तो है ना। ठीक है ना, चलो,
बहुत सुंदर बातें हैं।
ओम शांति, ओम शांति।
तो हम सभी ऐसे ही सच्चे आज्ञाकारी और बाबा की हर श्रीमत को दिल से लगाने वाले बनेंगे और बाबा से इतनी मीठी बातें योग लगा के करेंगे कि हमारे सारे बोझ बाबा हमारे बोलने से पहले ही ले लेते हैं। तो दीदी जी का हम सभी एक हाथ की ताली से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे। दीदी खास मधुबन से हमारे बीच में समय निकाल के आए और हमें चिंता मुक्त बनने की सारी विधि सुनाई, ड्रामा की पटरी पर खड़ा रहना सिखाया। तो दीदी का और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है, सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया दिल का ये कहना है, इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।